मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 21 मार्च 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज के इस लाइफ मैनेजमेंट के लिए जो मैंने विषय चुना है उसे यदि कोई शीर्षक ही देना हो नाम ही देना हो तो आप कह सकते हैं जिंदगी की समझ। हालांकि सच पूछे तो लाइफ मैनेजमेंट में हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सब इसीलिए कर रहे हैं और बहुत विस्तार के साथ कर रहे हैं ताकि हम सब में जिंदगी की एक समझ पैदा हो जाए। क्योंकि मैं तो यह मानकर चलता हूं मित्रों कि जिंदगी ज्ञान से नहीं बनती है, जिंदगी सूचनाओं से नहीं बनती है, जिंदगी इंटेलेक्चुअलिटी से नहीं बनती है। जिंदगी तो बेसिकली यदि बनती है तो समझदारी से बनती है। मैं बनने की बात कर रहा हूं, मैं उपलब्धियों की बात नहीं कर रहा हूं। बनने का मतलब है जिंदगी को जीना। उस रूप में जिंदगी हम सबसे एक अलग ही किस्म की समझदारी की मांग करती है और उसी समझदारी को समझने के लिए लाइफ मैनेजमेंट का प्रावधान भी किया गया है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जैसा कि आप लोगों के मेल से जानकारी मिलती है या कभी जब मेरे प्रिय श्रोता व्यक्तिगत रूप से उनसे मुझे मेरी मुलाकात हो जाती है तो वो बताते हैं कि यह उन्हें बहुत अच्छा लगता है और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें काफी लाभ भी हो रहा है। तो इस लिहाज से तो मित्रों लाइफ मैनेजमेंट के सारे एपिसोड यूं कह लीजिए कि जिंदगी की समझदारी की ही बात करते हैं। लेकिन आज के शीर्षक को मैंने स्पेशली जिंदगी की समझ का ही नाम दिया है क्योंकि दूसरा सच पूछे तो कोई समझ में आ भी नहीं रहा था। मित्रों इससे पहले के दो भागों में दो अंकों में हम लोगों ने थोड़ी सी गंभीर किस्म की बातें की हैं। आपको मालूम है वो गंभीर किस्म की बात आकर्षण को लेकर के थी, एक निर्णय जो वैचारिक होना चाहिए उसको लेकर थी और मुझे लगता है कि वो बात थोड़ी सी गंभीर किस्म की भी हो गई थी, है ना, थोड़ी सी फिलोसॉफिकल हो गई थी। जब बात थोड़ी सी फिलोसॉफिकल होती है तो दिमाग पर बोझ पड़ता है क्योंकि उसे समझना पड़ता है। बहुत सी चीजें समझने की कोशिश के बाद भी समझ में नहीं आती हैं तो थोड़ी सी नीरस भी चीजें हो जाती हैं, उबाऊ भी लगने लगती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा एक हल्का फुल्का विषय लेकर के और उसे एक अलग अंदाज में आपके सामने रखा जाए ताकि वो पिछली जो दो तीन दिन की जो आपकी निरसता है, यो कह लीजिए एक रास्ता है, वो थोड़ी भंग हो सके। तो मित्रों आज के इस लाइफ मैनेजमेंट के लिए विषय तो ठीक है कि जिंदगी की समझ है, लेकिन जिंदगी की समझ को समझाने के लिए मैंने जिसको चुना है वो है बद्रीनाथ की दुल्हनिया। ये बद्रीनाथ की दुल्हनिया नहीं है, ये बद्रीनाथ की दुल्हनिया ये फिल्म है और फिल्म में कैसे जिंदगी की एक अलग किस्म की समझदारी को बड़े ही खूबसूरत मनोरंजक कहानी के अंदाज में पेश किया गया है इसी बात की थोड़ी बहुत मैं चर्चा करूंगा। और मैं यह उम्मीद के साथ इस बात की चर्चा कर रहा हूं फ्रेंड्स कि आप लोगों में से ज्यादातर श्रोताओं ने ये बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म देखी होगी। वैसे भी जो इसकी रिपोर्ट आ रही है कि एक सप्ताह के अंदर इसने 76 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है तो मैं मान करके चलता हूं कि वो बिजनेस कराने में आप सबका मेरा हम भारतीयों का ही योगदान है तो आप उसमें योगदान करने वालों में से एक होंगे। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाए होंगे तो फिर डेफिनेटली इसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी मैं कुछ इस तरह से भी समझाने की कोशिश करूंगा कि यदि आपने ये फिल्म नहीं भी देखी हो तो भी आपको ऐसा न लगे कि बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स बद्रीनाथ की दुल्हनिया को मैं समझ सकता हूं कि अलग अलग पीढ़ी के लोग अलग अलग नजरिए से देखेंगे। सच पूछे तो जब इस फिल्म के बारे में मेरी बिल्कुल नई पीढ़ी से बात हुई, वह पीढ़ी जो अभी अपने कैरियर के लिए स्ट्रगल कर रही है या जो थोड़ी समय पहले ही अपने कैरियर में सेटल्ड हो गई है, तो उनको इस फिल्म ने कोई बहुत अपील नहीं किया। लेकिन जब उससे पीछे की पीढ़ी पर जब मैं जाता हूं जो करीब 45-50 साल की उम्र को पार कर चुकी है तो उनको ये फिल्म अच्छी लगी। और उससे बड़ी पीढ़ी के बारे में तो मैं अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से फिल्म को सफलता मिल रही है मैं मान करके चल रहा हूं कि कुल मिलाकर के फिल्म अच्छी लगी है लोगों को। देखिए दोस्तों इसमें जिंदगी का कौन सा फलसफा है उस पर मैं थोड़ी सी आपसे बातें करने जा रहा हूं। आप इस फिल्म में दो एक समानांतर लाइन पाएंगे रेल की पटरियों की तरह दो समानांतर। एक समानांतर लाइन पटरी आपको हीरो और हीरोइन के रूप में दिखाई देंगे, जिसमें अरुण आपके वरुण धवन हैं और आलिया भट्ट हैं। वो दूसरे एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन मानसिक स्तर पर वो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। जो वरुण धवन है, बद्रीनाथ जिनको कहा गया है, वो बहुत ही सामान्य परिवार नहीं, पैसे वाले परिवार का तो है, मिडिल क्लास का है, लेकिन उसकी जो लाइफ की अप्रोच है वो एक मिडिल क्लास की, जो एक ठेठ जो हिंदुस्तानी अप्रोच होती है वह अप्रोच है। कम पढ़ा लिखा है, मस्त है, रहता है, और यूं कह लीजिए कि जो परंपराएं हैं उनका पूरी तरह से पालन करता है। जबकि आलिया भट्ट है, वो कोटा में रह रही है, पढ़ाई कर रही है, दो बहनें ही हैं और वो कैरियरिस्ट है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। तो इन दोनों में अगर उस तरीके से आप देखें तो कोई मैच नहीं है, मेंटल मैच आप जिसे कहते हैं वो नहीं है। और हालत ये होती है कि जबकि शादी होनी है, अपने हमारे बद्रीनाथ जी अपने दुल्हनिया के इंतजार में खड़े हैं, शेरवानी और बकायदे वो पहन करके, लेकिन पता लगता है कि वो जो दुल्हनिया है वो तो भाग गई। राइट, यहां तक फिल्म है। इसके बाद फिल्म एक टर्न लेती है मित्रों, और ये भी सिंगापुर पहुंच जाता है, क्योंकि इसका जो चयन है आलिया भट्ट का वो एक एयरलाइंस में हो जाता है एयर होस्टेस के लिए। और वहां जब जाता है, इसके पिता भी बहुत नाराज होते हैं वरुण धवन के, पकड़ करके लाओ उसे हम फांसी पर चढ़ा देंगे क्योंकि हमारी इतनी बदनामी हुई है, फलाना फलाना, और दहेज वगैरह की जो समस्याएं हैं वो फिल्म में जगह जगह पर दिखाई गई है, एक अच्छी बात है। फिर जब वो सिंगापुर पहुंचता है तो वो देखता है कि आलिया किस तरीके से अपने पैरों पर खड़ी है, कितनी एक बहुत ही दमदार लड़की बन गई है। वह वरुण धवन और उसके दोस्त की काफी मदद भी करती है, वरुण फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। एक प्रसंग बस अब आपको यहां याद करना है, वरुण धवन कहता है कि तू मेरे साथ झांसी चलो, झांसी में रह रहा है वरुण धवन। वो मना करती है, किस बात पर मना करती है, जो इस फिल्म के केंद्र में है मित्रों। और केंद्र में वो ये कहती है कि तुम तो अपने पिता से इतने डरते हो, तुम उसके फोन करके ये बातें कहो कि क्या वो मुझे सच में इस रूप में स्वीकार करेंगे। मतलब वो यूं कह लीजिए कि एक लड़की की जो एक इंडिपेंडेंसी होती है, उसकी अपने जीवन की जो इच्छाएं होती हैं, उसके पक्ष में वो वकालत करती है कि वो केवल ऐसा नहीं है कि वो बच्चा पैदा करने वाली मशीन मात्र है, उसकी कोई अपनी इच्छाएं नहीं होती हैं, आप लोग जिस तरीके से चाहेंगे आप उसे रखेंगे, तुम अगर पिता से अगर कह सकते हो तो अभी कहो। लेकिन वरुण नहीं कह पाता, अपने पिता से वो डरता है। यहां से जो है वरुण के में परिवर्तन आता है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं, उनके पिता की जितने भी मान्यताएं हैं वो सही नहीं है। और इसके बाद आप जानते हैं कि वो वरुण वापस लौट करके आता है, और जब अपने पिता और जब उसके पिता एक पूजा कराते हैं, और पूजा इस लिए कराई जाती है क्योंकि उनकी जो बहू है, जो बड़े बेटे की पत्नी है, वो गर्भवती है, और इसलिए कराई जाती है कि बेटा पैदा हो, उसके लिए पूजा कराई जाती है। और फिर वो प्रसंग वहां वरुण धवन फिर अपनी एक विद्रोही स्वरूप दिखाता है और कहता है कि आप जो झांसी को किसने प्रसिद्ध किया है, किसी राजा ने, किसी लड़के ने प्रसिद्ध नहीं किया, झांसी अगर जानी जा रही है तो एक लड़की की वजह से, झांसी की रानी की वजह से जानी जा रही है। इसके बाद वो फिल्मी स्टाइल है, आप समझिए कि वो लौट करके भी आ जाती है, जो आलिया भट्ट है वो सिंगापुर से लौट करके आ जाती है क्योंकि इसका प्रेम से प्रभावित करता है। और एक दिन जब वरुण धवन चुपचाप सिंगापुर में उसके कमरे को छोड़ करके निकल जाता है तो वो खालीपन महसूस करती है, वरुण को मिस करती है, और वो वापस आ जाती है। फिर आपने देखा कि जो फिल्म में सेटलमेंट हुआ है वो इस तरह से कि वो यहां आकर के एक पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोलती है, नहीं पायलट ट्रेनिंग सेंटर आप कह लीजिए, एयर होस्टेस ट्रेनिंग सेंटर वो खोलती है शायद इसी तरह का, यानी कि वो अपने कैरियर को इंटैक्ट रखती है। तो दोस्तों ये जीवन का एक पक्ष है, यानी कि इस एक पक्ष में, मैंने जानबूझ करके कहानी आपको सुनाई है, ये जो एक पक्ष है इस एक पक्ष में दिखाया गया है कि जिसे आप चाहते हैं, जिसे आप मिस करते हैं, सही में वही आपका जीवन साथी हो सकता है। और जीवन में जो है केवल नौकरी, पेशा, पैसा, धन, यही कैरियर यूं कह लीजिए, वही सब कुछ नहीं है। आपको लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि जीवन में भावनाओं का भी बहुत बड़ा रोल होता है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये आलिया भट्ट और वरुण धवन के जरिए स्थापित होती है। लेकिन एक दूसरा पक्ष है जो मुझे लगता है कि बहुत सेंसिटिव पक्ष है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पक्ष है, जो फिल्मों में बहुत कम दिखाया जाता है, उस खूबसूरत पक्ष की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। और सच पूछे तो इसी पक्ष को बताना ही मेरा उद्देश्य है, जो जिंदगी की समझदारी से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो मैंने अभी बात बताई इसके बारे में आप सब जानते हैं। मित्रों, वो जो वरुण धवन का जो बड़ा भाई है उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए कि वो किसी लड़की से प्यार करता था लेकिन उसकी शादी उससे नहीं हो पाती है। उसके पिता थोड़े डिक्टेटर किस्म के आदमी है, यानी कि उसके भाई के पिता उसकी शादी किसी और लड़की से कर देते हैं। अब ये जो उनका बड़ा बेटा है या वरुण धवन का जो बड़ा भाई है वो बहुत परेशान रहता है, उसका मन नहीं लगता है, वो शराब पीने लगता है, उसकी याद में समय गुजारता है, छत पर बैठा रहता है। इस तरीके की घटनाएं दिखाई गई हैं। और एक दिन वरुण अपने बड़े भाई से पूछता है कि भाई, अब शब्द मुझे ज्यों के त्यों याद नहीं है, कि क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आती है? तो बड़ा चौंकाने वाला उत्तर देता है उसका बड़ा भाई, बोले कि नहीं, अब नहीं आती है। तो वो चौंक जाता है कि जिसे आप इतना प्यार करते थे आप कह रहे हैं कि उसकी याद नहीं आती है, आप क्या कह रहे हैं? तो आप देखिए कि जो बड़ा भाई है वो क्या कह रहा है, कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही जिंदगी की समझदारी है दोस्तों, और यह सच पूछे तो यही जिंदगी है। तो बड़ा भाई कहता है कि देखो, ये तुम्हारी भाभी है ना, ये खुद में इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि अब इसके अच्छे के सामने मतलब उसकी याद नहीं आती है। दोस्तों, ये जिंदगी है, जिंदगी की विशालता है, जिंदगी की विराटता है। याद रखिए कि जिंदगी किसी के टिक देने से नहीं टिक जाती, जिंदगी में कोई अवरोध नहीं है, वो अपने में इतनी विराट, जिंदगी इतना विराट है, इतनी विशाल है कि वो अपने अंदर बड़े से बड़े दुख को समेटने की ताकत रखती है, बड़े से बड़ी बाधाओं को लांग कर पार कर जाने की हिम्मत रखती है, और फिर उन सबको पचाकर जिंदगी को जीने का फलसफा उसके पास है। इतनी ताकत इसके उसके पास, उसकी इतनी पाचन शक्ति, इतनी पाचन शक्ति वो अपने पास रखती है। मित्रों, यह जिंदगी है। जिसे आप प्यार करते हैं, जरूरी नहीं कि आप उससे पा ही लें। प्यार करना और पाना दोनों में कहीं कोई समानता नहीं है। प्यार अलग बात है, पाना अलग बात है, और जिंदगी जीना बिल्कुल अलग बात है, जिसको बड़े भाई के माध्यम से पेश किया गया है। और आप देखिए कि वो भी पढ़ी लिखी लड़की है, किस तरीके से फिर अपने पति की मदद करती है और बाद में पिता उसे स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने कहा कि दो समानांतर लाइनें हैं, समानांतर पंक्तियां हैं, लेकिन ये जो दूसरी पंक्ति अभी जो मैंने बात बताई है, ये जिंदगी की समझ है। पहली पंक्ति के बारे में तो आप जानते हैं, पहली समानांतर जो पटरी है उसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन इस दूसरी पटरी को जानिए, यह आपको जिंदगी की एक अलग किस्म की समझ देगी। दोस्तों, मेरे मुझसे एक लड़की से मेरी बातचीत हो रही थी अभी फिल्म के बाद, फिल्म के संदर्भ में ही। तो उस लड़की ने बताया कि वो भी किसी लड़के को चाहती है, और जब ये पूछा, मैंने पूछा कि भाई तुम क्यों चाहती हो, तो उसका जवाब था कि क्योंकि वह मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि जिंदगी की समझदारी थोड़ी दूसरे चीजों की मांग करती है। आप उससे क्यों शादी करना चाहते हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझता है, बल्कि आप उससे शादी कीजिए जिसे आप बहुत अच्छे से समझते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बहुत अच्छे से समझ रहा है, अगर उसके समझ में कुछ खोट आ गई तो आप क्या करेंगे? लेकिन अगर आप किसी को बहुत अच्छे से समझ गए हैं और उसमें अगर कोई खोट आ गया तो आप कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि वो कंट्रोल करना आपके हाथ में, आपने समझा है ना। वहां आप जरूरत के हिसाब से अपने आप को बदल लेंगे, चीजें खराब नहीं होंगी। लेकिन जिसने आपको समझा है, अगर उसने कुछ और समझा और गलत समझ लिया और फिर वो गड़बड़ हो गया, तब आप क्या कर लेंगे? क्योंकि अब तो सब कुछ उसके हाथ में है। दोस्तों, यहां फिर से एक जिंदगी की अलग किस्म की समझदारी है कि आप समझिए सामने वाले को, क्योंकि उस पर आपका नियंत्रण रहेगा। आपकी समझ पर तो आपका नियंत्रण है ना, दूसरे की समझ पर तो आपका नियंत्रण नहीं है, मेरा नियंत्रण नहीं है। जिस पर मेरा नियंत्रण है उसे मैं बदल सकता हूं, जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं है उसे मैं बदल नहीं सकता। तो दोस्तों, काफी वक्त हो चुका, मैंने एक डेढ़ मिनट ज्यादा वक्त भी ले लिया है, तो इस टॉपिक को अब मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। इजाजत चाहता हूं, नमस्कार।